मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के इस 19 फरवरी 2016 के afis.com में आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ ही दोस्तों, स्वागत मैं कर रहा हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दिव्या प्रभा, पाली से आप हैं, राजस्थान से, अब्दुल नदीम, आप कदौरा जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, सतीश कुमार यादव वाराणसी से हैं, संकेत श्रीवास्तव सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, अंकुश वैद्य रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, शुभम प्रहरी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं और केतांजल नारायण इलाहाबाद से हैं। तो दिव्या, अब्दुल, सतीश, संकेत, अंकुश, शुभम और केतांजल, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन मुझे एक दो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी पड़ती है। हालांकि जो स्टूडेंट लगातार ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं वो उस इन्फॉर्मेशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी जो नए नए लिसनर्स जो जुड़ते चले जाते हैं उनको ध्यान में रखकर लगभग मैंने अपने सिस्टम में इसे शामिल कर लिया है कि शुक्रवार को मैं उन सूचनाओं को दोहराऊं। तो मित्रों, सूचना यह है कि सैटरडे और संडे इन दो दिनों में डेली ऑडियो नहीं आता है, लेकिन दूसरी चीजें अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि सैटरडे को प्रेस क्लिपिंग्स आपको उसी तरह से नॉलेज सेंटर पर पढ़ने को मिलेंगी जैसे कि अभी बाकी शेष पांच दिन मिलती रहती हैं। इसी के साथ ही आपको नॉलेज सेंटर पर ही योजना और कुरुक्षेत्र के दोनों एडिशन हिंदी के भी और इंग्लिश के भी संस्करणों से एक एक आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद मित्रों, जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में आपको विशेष रूप से गंभीरता बरतनी चाहिए। उसका कारण है, कारण यह है कि जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स होती हैं, चाहे वो आर्टिकल ही क्यों न हो, वो आर्टिकल्स अपने आप में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के एक कंप्लीट आर्टिकल नहीं होते। मतलब बहुत कम आर्टिकल ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंप्लीट आर्टिकल कह सकते हैं, जो उस विषय पर आपको पूरी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। लेकिन जहां तक कुरुक्षेत्र और योजना के लेखों का सवाल है, वो जिस टॉपिक को लेते हैं आप देखेंगे कि उस टॉपिक पर आपको एक कंप्लीट जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो अवेलेबल करा देते हैं। दूसरी बात कि योजना और कुरुक्षेत्र में जो आर्टिकल्स छपते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही आर्टिकल्स सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स के लिए जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि उसके जो आर्टिकल्स मुझे लगते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स को जानना ही चाहिए, इन्हें पढ़ना ही चाहिए, तो वे आर्टिकल आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। यानी कि जो आर्टिकल आप महीने भर में 4-5 आर्टिकल्स लगभग एक पत्रिका के देखते हैं, आपको पढ़ने को मिलते हैं, आप मान करके चलिए कि कम से कम वे आर्टिकल्स तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। और मैं चाहूंगा कि बेहतर होगा कि आप इन आर्टिकल्स को अपने पास रख भी लें, क्योंकि ये ऐसे नहीं होते कि आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे और इन्हें छोड़ देंगे। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि इन आर्टिकल्स को पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर महसूस करते हैं उन्हें नोट कर लें, तब फिर आप इन आर्टिकल्स से किनारा कर सकते हैं। अदरवाइज ये आर्टिकल आपके लिए एक प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि एक टॉपिक पर प्रोवाइड किया गया एक पूरी तरह से नोट्स है। और दोस्तों, यह भी देखने में आया है पिछले 3 सालों के दौरान कि योजना और कुरुक्षेत्र में जो आर्टिकल छपते हैं उनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्वेश्चंस वहीं से लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उन मैगजीन्स में आर्टिकल ऐसे जरूर छपते हैं जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो दोनों पत्रिकाएं हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही पत्रिकाएं हैं, और बट नेचुरल है कि ऐसे पत्रिकाओं में फिर सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो व्यू है, सरकार के जो सर्वे हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण मान करके उसमें जगह दी जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें केवल सरकार के व्यू को ही जगह दी जाती है, इंडिपेंडेंट राइटर्स होते हैं वो अपने व्यू भी अपने ढंग से रखते हैं और वैसे आर्टिकल्स भी छपते हैं। इसीलिए कहने का कुल मतलब यह कि योजना और कुरुक्षेत्र के जो आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हर सैटरडे को आपको अवेलेबल होते हैं, उनके प्रति आपको पूरी गंभीरता बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। दोस्तों, कल हम लोग लिबरल थॉट्स के थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे, या कह लीजिए कि इसके उल्टे हम लोग एक संकीर्ण विचारों या तंग नजरिए के बारे में बातें कर रहे थे। दोस्तों, जिंदगी के लिए तो एक लिबरल थॉट्स या कह लीजिए कि बहुत ही उदार दृष्टिकोण, खुला मन, खुले विचार, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कमरा चाहिए ही जिसमें खिड़कियां हों, बंद कमरा नहीं चाहिए कि जिसमें न खिड़कियां हों और दरवाजा भी हो तो घुसते साथ ही आप उसे बंद कर दें, ना तो बाहर की हवा अंदर आ सके जो नई और ताजी है, और न ही अंदर की प्रदूषित हवा या उमड़ने घुमड़ने वाली हवा ही बाहर जा सके, और इस तरह से वो जो कमरा है वो एक तरह से घुटन भरा कमरा बन जाए। हमारे दिमाग के साथ भी लगभग लगभग यही होता है। अगर हम अपने दिमाग को खुला नहीं रखेंगे तो मान करके चलिए कि समय तो तेजी से आगे बढ़ता ही जाता है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हम जरूर, अगर अपने को हमने रोक लिया है तो फिर पिछड़ जाते हैं, और जैसे ही समय के साथ हमारे विचारों का तालमेल टूटता है, वैसे ही सच पूछिए तो जिंदगी का भी प्रकृति के साथ या समाज के साथ तालमेल टूट जाता है। सिविल सर्विस के साथ तो ये विशेष रूप से होता है दोस्तों, इसलिए कि साल भर पहले वही घटना, चाहे वो संविधान से संबंधित हो, न्यायालय से संबंधित हो, कृषि व्यवस्था से संबंधित हो, वही घटना साल भर पहले जो थी, एक साल के बाद वह वैसी ही नहीं रह गई है। और आप जानते हैं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, कई साल तक करते चले आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी है कि साल भर से पहले जो कुछ भी उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा था उसे वो अपडेट करें, और अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो पिछड़ जाएंगे, उनका तालमेल अपने समय से नहीं बन पाएगा, और एग्जामिनर इस बारे में बहुत सतर्क रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने समय की अपडेटेड जानकारी नहीं है। इसे ही कहा जाता है मित्रों करेंट अफेयर्स। यहां मैं थोड़ी सी बातें आपसे इसी बारे में शेयर करना चाहूंगा कि फिर आप अपने दिमाग को खोलें कैसे, या मैं जब यह कह रहा हूं कि दिमाग की खिड़की खुली होनी चाहिए तो उसके कहने से मेरा मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, और खासकर यंग एज में, वो वह होती है किसी भी दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुनने की चुनौती। यहां मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं, ध्यान से सुनने की चुनौती, और सच पूछे तो आप कहेंगे कि ये चुनौती क्या बात हो गई, चुनौती क्यों, ये क्या चैलेंज है। जैसे मान लीजिए आप मेरे ऑडियो को सुन रहे हैं, इसमें चैलेंज कहां है, मैं तो सुन रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं सर वो हम सुन रहे हैं, हमारी समझ में भी आ रहा है। हाँ मित्रों, इसमें एक चुनौती होती है। चुनौती ये होती है कि जब हम सुनते रहते हैं तो हमारे विचार लगातार हस्तक्षेप उसमें करते रहते हैं, हम धैर्य के साथ नहीं सुनते। आप देखिए कि अगर आप डेढ़ घंटे की क्लास जब अटेंड करते हैं तो कितनी बार आप घड़ी को देखते हैं, या 45 मिनट की क्लासेज होती हैं ज्यादातर कॉलेजेस में, कितनी बार आप घड़ी को देखते हैं, कितनी बार खिड़की से झांक करके आप बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, कितनी बार आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि अगर आपको दूसरे स्टूडेंट्स थोड़े से आलस्य से भरे हुए या इधर उधर कुछ और काम करते हुए दिखेंगे तो आपका ध्यान ही भंग नहीं होता, बल्कि आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि यार जब वो सीरियसली नहीं ले रहा है तो मुझे भी सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। शायद वो इसलिए सीरियसली नहीं ले रहा है क्योंकि सीरियसली लेने की कोई बात ही क्लास में नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सुन नहीं रहे हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आएगी, सही धैर्यपूर्वक सुनने की जो प्रणाली है, जो एक पद्धति है, प्रक्रिया है, वह बाधित हो जाएगी। तो मित्रों, इसका सबसे पहला तरीका होता है कि आप से जो कुछ भी कहा जा रहा हो उसे आप धैर्य से सुने। आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, उसमें सुधारना चाहते हैं, उसे ज्यों का त्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय आप ध्यान से सुनिए, उस बीच में मत टोकिए कि नहीं मुझे ये मालूम है, ये भी मत कहिए, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में आप ये दर्ज करा देंगे अपने दिमाग में कि मुझे ये मालूम है, याद रखें कि सुनने का काम बंद हो जाएगा। मित्रों, सुनने की कला एक बहुत बड़ी कला है, आपको इसे सीखना चाहिए, और इसे सीखने का केवल एक ही तरीका होता है, धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालना। दूसरी जो बात होती है मित्रों, वो ये है कि आप दूसरों को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो युवा अवस्था होती है, नो डाउट कि बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई अवस्था होती है, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं आप, स्वप्नों से भरे हुए होते हैं आप, जोश होता है और कुछ भी कर सकते हैं और कर गुजरने के लिए कर भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरों को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही ठीक हैं, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। आप देखिए कि घर परिवार की आप बात लीजिए, सब मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं उनको आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए कि घर वालों से आप कुछ कहते हैं और घर वाले आपसे एग्री नहीं करते, अब आप केवल अपने विचार या जो मानसिक स्थिति होगी उसका मूल्यांकन कीजिए कि जब आपसे वो डिसएग्री करते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं और उन विचारों के अनुकूल आपके बिहेवियर का पैटर्न क्या होता है। आप देखेंगे कि आप नाराज हो जाएंगे, बात करना बंद कर सकते हैं, आप ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लग सकते हैं, आप वहां से उठकर जाने लग सकते हैं, मन ही मन बड़बड़ाने लग सकते हैं, कुछ भी ऐसा एक्शन आपका अपने व्यक्तित्व और विचारों के अनुसार होगा। इसका मतलब है कि आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये जो दूसरे को एक्सेप्ट न करने के जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं मित्रों, वो मुझे लगता है कि ज्यादातर उस समय आते हैं जब हमें ये लगता है कि ये जो कह रहा है ये मेरे मन मुताबिक नहीं है, या इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरी बात नहीं बन रही है। मतलब ये हुआ कि हम जो दूसरों को रिजेक्ट करते हैं उसका एकमात्र, या जो सबसे बड़ा कहूंगा, एकमात्र तो नहीं कहना चाहिए, उसका जो सबसे बड़ा आधार होता है वो ये होता है कि इसकी कही गई बात मुझे सूट नहीं कर रही है, मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे हित में नहीं है, और ऐसी स्थिति में हम रिजेक्ट कर देते हैं। मित्रों, सच पूछे तो सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है उसके बारे में आप अभी तुरंत फैसला नहीं कर सकते कि वह आपके हित में है या नहीं है, वह तो समय बताएगा। जिसमें जितनी ज्यादा दूरदृष्टि होगी वह अभी की बात को आगे आने वाले भविष्य में उतना ज्यादा फैलाकर देख सकेगा और उतने सही निर्णय ले सकेगा। मित्रों, इसीलिए हमारे दिमाग में अपने स्वार्थ के अनुकूल, ये भी कह लीजिए कि अपने ईगो के अनुकूल कुछ कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, कुछ अवधारणाएं बन जाती हैं, फिर हम उन अवधारणाओं को ही जीने लगते हैं, उन्हीं अवधारणाओं को ही सभी जगह अप्लाई करने लगते हैं, आरोपित करने लगते हैं, और जब भी कोई बात कोई घटना उन अवधारणाओं के विरुद्ध होती है वैसे ही हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं और सुनना बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मित्रों, अगर मैं अपने ही विचारों को बार बार सुनना चाह रहा हूं, अपने ही विचारों को बार बार पढ़ना चाह रहा हूं, तो मेरा केवल एक ही छोटा सा सवाल आप सब प्यारे साथियों से है कि आप सोच करके देखिए, तो क्या मैं अपने को एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या मेरा एक्सटेंशन हो रहा है, क्या मैं बढ़ रहा हूं, क्या मैं अपने विचारों में व्यक्तित्व में कुछ जोड़ रहा हूं? नहीं, सच पूछे तो जो ऑलरेडी मेरा है मैं उसी पर अंडरलाइन करते, उसी को उसी के ऊपर लाइन खींचते जा रहा हूं। हो सकता है कि लाइन थोड़ी बहुत मोटी हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन लंबी तो नहीं होगी। और जब ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, तो ये लिबरल थॉट्स या जो उदारवादी विचार होते हैं, जो खुले विचार होते हैं, उनके विरुद्ध तैयार किया गया सबसे बड़ा, आप कह लीजिए कि आड़ होता है, सबसे बड़ी दीवार होती है। तो मित्रों, मैंने कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रखी हैं कि जिनका आप रोजाना अभ्यास करके अपने विचारों को बड़ा बना सकते हैं, और विश्वास कीजिए कि जिस दिन आपके विचार बड़े हो जाएंगे उस दिन आपके बड़े होने की शुरुआत हो चुकी होगी, हो जाएगी। तो मित्रों, अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। कुछ खबरें हैं मित्रों जो काफी महत्वपूर्ण है, जिन पर मैं थोड़े से विस्तार से चर्चा भी करना चाहूंगा। पहले जो एक दो खबरें हैं, मैं आपको उनके बारे में केवल एक थोड़ी सी सूचनात्मक बातें बता दूं। सुप्रीम कोर्ट का देखा आपने कि अरुणाचल प्रदेश की घटना चल रही है, इसके बारे में हम लोग इससे पहले के ऑडियो में बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि घटना लगभग एक महीने पहले से घटी है और इसके बाद लगातार अभी तक वह चलती आ रही है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में आपको एक थ्रेड मिलेगा, जिसको आप धागा कह लीजिए। जैसे अलग अलग फूल को अगर एक धागे में पिरो देते हैं तो वह माला बन जाती है। फूल माला से अलग नहीं है और माला फूल से अलग नहीं है, फूलों से ही माला बनी है, लेकिन वो अलग अलग थे। माला आपने उसे एक में पिरो दिया, वो माला बन गई। सच पूछे तो जो रेडियो न्यूज हम सुनते हैं, स्पेशली रेडियो न्यूज, उसका काम ही हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा कि ये रोज जो हमने घटना सुनी है वो एक फूल है, फ्लावर की तरह है। कल जब हम सुनेंगे तो हमारे पास दूसरा फूल हो जाएगा, परसों सुनेंगे तो फिर हमारे पास एक और फूल हो जाएगा, और जब तक वो घटना पूरी नहीं हो जाती तब तक जितने भी फूल इकट्ठे हुए हैं उनको हम पिरोकर एक धागे में माला का रूप दे देते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सरकार के सामने जो संकट आया, विधानसभा ने उस पर जिस तरीके से एक्शन लिया, केंद्र सरकार ने, आप अब देखिए कि उसमें एजेंसीज कितनी हैं। विधानसभा एक है, स्पीकर विधानसभा के हेड ही होते हैं, आपको मालूम है। सरकार जो चीफ मिनिस्टर हैं, फिर एमएलए जो विधायक हैं वहां की सरकार के बाद, फिर जब गवर्नर, वो एक एजेंसी है सरकार के पूरे हमारे संवैधानिक संस्थानों के। गवर्नर से बात फिर राज्यपाल तक पहुंची, फिर राज्यपाल ने अपनी तरफ से स्टेप लिया, गवर्नर के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लगाया। इसके बाद लोकतांत्रिक संस्था में विपक्ष है, विपक्ष यानी कि जो पहले सत्ता में थी, यहां का विपक्ष का मतलब कांग्रेस आप ले लीजिए, विधानसभा वो अरुणाचल प्रदेश में जो विपक्ष थी वो तो सारा का सारा संकट इसी बात को लेकर के हुआ, जो सत्ता में थी वही विपक्ष के रूप में आ गई, वही अपने ही सत्ता का विरोध करने लगी। ये सारे संकट आए और इसके बाद फिर आया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी है। इतने सारे एजेंसीज आपको इसमें संवैधानिक इस संकट में दिखाई देंगे। अब इन सारे के सारे जो संवैधानिक जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, इस पर आपकी बहुत क्लियर निगाह होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। नो डाउट कि अगर हम परीक्षा के लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास दो तीन सबसे बड़ी संवैधानिक एजेंसीज इस मामले में दिखाई देती है। एक है गवर्नर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नो डाउट कि प्रेसिडेंट को हम यहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नर है वो एक तरह से प्रेसिडेंट का ही प्रतिनिधि है राज्यों में। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी एजेंसी है और सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे के पूरे मामले में, वो है जुडिशरी, जिसमें हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अब इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे ले रही है, इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। मैं तो आपको केवल इस घटनाओं का, या जो रोज आप न्यूज सुन रहे हैं, कैसे सुनेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद कैसे इस पर आप अपनी तरफ से कोई थॉट्स एस्टैब्लिश करेंगे, केवल इसका थोड़ा सा एक पैटर्न या प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि वहां जो है राष्ट्रपति शासन खत्म किया जा सकता है, और हाई कोर्ट से कहा है, जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, कि ये जो 14 एमएलए को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उनके बारे में आप दो सप्ताह के अंदर डिसीजन दीजिए। अब ये स्थिति यहां तक आई है, अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन देती है। इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा घटनाक्रम है ये पूरा हो जाएगा, और जब ये घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपके पास सोचने के लिए, अपने विचारों को स्थापित करने के लिए एक कंप्लीट व्यू होगा। तब ये मान करके चलिएगा आपकी, हां अब आपने इस इवेंट पर अच्छी तैयारी कर ली है। लेकिन मित्रों एक चीज याद रखिए कि अगर आप डे टू डे के इस इवेंट पर नजर नहीं रखेंगे तो फिर वो तैयारी नहीं हो पाएगी जो सही मायने में सिविल सर्विस के स्टूडेंट की तैयारी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि सर इतना ज्यादा लफड़ा पालने की क्या जरूरत है, बट नेचुरल है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो आर्टिकल्स आएंगे ही आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे। आप सोच सकते हैं कि हम उस आर्टिकल को पढ़ लेंगे, कंप्लीट आर्टिकल होगा और हमारा काम चल जाएगा। आप गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं फ्रेंड, वो ये है कि जो मल्टी डायमेंशनल तरीके से जो चीजें पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, वो चीज आपसे मिसिंग हो जाएगी। इसलिए कि आर्टिकल जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा या जो भी व्यक्ति आर्टिकल लिखेगा वह केवल एक पक्ष को लेकर के लिखेगा, अपने विचारों के अनुसार लिखेगा, तो जो दूसरे उसके डायमेंशंस हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, जो अदर एंगल्स हैं, वो आपसे छूट जाएंगे। और जब वो आपसे छूट जाएंगे तो जो एनालिटिकल जो पावर होनी चाहिए वो भी छूट जाएगी। इसलिए कि एनालिटिकल पावर का मतलब ये है कि आप उसमें से कितने एंगल्स निकाल सकते हैं, कितनी चीजों को उस घटनाक्रम में जोड़ करके अपनी बात को रख सकते हैं। और आपको जो आंसर लिखना है कभी मत भूलिए कि वो तार्किक आंसर होना चाहिए, सुपरफिशियल आंसर नहीं। सुपरफिशियल आंसर और तार्किक आंसर क्या होता है, जैसे अब मैं आता हूं दोस्तों कि दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो कल के न्यूज में है सिविल सर्विस के लिहाज से, वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देश का जारी किया जाना। यह सबसे बड़ी खबर है, इसे मैं कल के न्यूज की मानता हूं। और आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि ये बात मिसिंग भी होगी, ये किसी न किसी रूप में आपको प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, और अगर आप रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम लोग पहले काफी बातें कर चुके हैं फ्रेंड्स, और मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड काफी एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किए हैं और एडिटोरियल आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उन आर्टिकल्स के साथ पूरा न्याय किया होगा। अब आप देखिए कि जो कृषि है उससे जुड़ी हुई यह बात है, और फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि मैंने कृषि व्यवस्था पर उनको 2-3 स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किए हैं। आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देख लीजिए मेंस के, तो आप देख करके मतलब विश्वास कर लेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं तो मान करके चलिए कि 3 क्वेश्चंस तो एग्रीकल्चरल फील्ड से हैं ही, उसके अलग अलग क्षेत्रों के क्वेश्चंस होते हैं। तो चूंकि ये जो फसल बीमा योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के फील्ड में, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए आपको अलग से पेजेस रखने चाहिए अपने पास ताकि आप उसे अपडेट कर सकें। और मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों ने उसे ठीक से सुना, और अगर सुन भी लिया तो उसका कितने लोग पालन कर रहे हैं, और नो डाउट मित्रों जो सफल और असफल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें फर्क इतना ही होता है कि कुछ तो सुनते ही नहीं, कुछ सुनते हैं तो करते नहीं, कुछ करते हैं तो उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से किया जाना चाहिए, और जो जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो भी कर लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो मित्रों कल के AIR न्यूज में आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं इस फसल बीमा योजना की उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां डेफिनेटली जब वो किसानों के बीच बोल रहे थे तब तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया ही होगा, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने अपने भाषण में जो कही थी उसे न्यूज में लिया गया, मैं आपको याद दिला रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि कम दर मतलब किसानों को जो प्रीमियम है वो कम देना होगा, प्रीमियम कम देना होगा और उसके बदले में उनको मुआवजा अधिक मिलेगा। मित्रों एक क्वेश्चन आया है, मान लीजिए कि किस मायने में यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बहुत हित में है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं। अब इसमें आप एक पॉइंट ये देते हैं कि इसकी दर बहुत कम है, प्रीमियम की दर बहुत कम है, जबकि उसके बदले में उनको मुआवजा बहुत अधिक मिलेगा। ये मान लीजिए कि आप एक लाइन ये लिखते हैं, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ये है उसमें, लेकिन ये तार्किक नहीं है। तार्किक इस मायने में मैं कह रहा हूं यहां, मतलब ये अतार्किक भी नहीं है, तार्किक अतार्किक न करके हम कह लें कि एक सुपरफिशियल स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, सुपरफिशियल भी नहीं कहे, एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन यही यदि आप ये लिखते हैं कि किसानों को प्रीमियम का 2.5% देना होगा, किसमें 1.5% देना होगा, किसमें 5% देना होगा, शेष राशि का भुगतान केंद्र करेंगी और राज्य करेंगी, तब वहीं पर बात बिल्कुल बदल जाती है। ये हो गया तार्किक, जहां आप वास्तव में कंटेंट लाकर बात कर रहे हैं, और जब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे तो बट नेचुरल है कि जो एग्जामिनर है वो देखकर खुश होगा और वो मानकर चलेगा कि नहीं, इस स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। अदरवाइज तो आप लिख दीजिए कि कम दर होगी, अधिक मुआवजा दिया जाएगा। फिर आप उसमें यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा आने पर, यह भी न्यूज में था, सुना आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि जब प्राकृतिक आपदा आएगा, ओले पड़ेंगे, बाढ़ आएगी, ये चीजें होंगी, तो किसानों को पूरा मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा मिलेगा उसमें जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही वो ये कि ऐसा नहीं कि पूरे गांव का, जब तक गांव की फसल खराब नहीं होगी तब तक किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर एक किसान के भी फसल को नुकसान होगा उसको भी मुआवजा मिलेगा, ये उसकी एक विशिष्टता है। अब आप इसी को यदि तार्किक रूप में कहेंगे कि कितना मुआवजा मिलेगा, एक्चुअल मिलेगा या उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, किस तरीके से उसका मूल्यांकन होगा, तो आपके कहने का तरीका बहुत वजनी हो जाएगा। तो मित्रों, इसे ही मैं कह रहा हूं कि जब हम सुपरफिशियल तरीके से अपनी बात लिखते हैं, अपना उत्तर लिखते हैं, या हम उसे बहुत गहराई के साथ, कंटेंट के साथ कहते हैं, और सिविल सर्विस का यही सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कंटेंट के साथ कह लेते हैं वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इसी के साथ ही आपने देखा मित्रों की जो प्रधानमंत्री जी से संबंधित जो एक खबर थी फसल बीमा योजना से संबंधित, उसमें दो उन्होंने बहुत अच्छे इशारे किए हैं। उन्होंने एक दो तीन जो बातें कही हैं, एक तो उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कृषि क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अभी उद्योग के क्षेत्र में तो लागू हो ही गया है, और उद्योग में भी आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेट का जो की जो दुनिया है उसमें ये ज्यादा लागू हो गई है, ज्यादा लागू हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये हम अब कृषि के क्षेत्र में भी लागू करेंगे, जो मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद उन्होंने जैविक खेती पर जोर दिया, जैविक खेती। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खेती का बहुत बड़ा एक विवाद सा चल रहा है, और जिस तरह से हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है उसमें अब जैविक खेती को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैविक खेती पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, इस विषय की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मित्र, जो सबसे बड़ी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कही है वो ये है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू करने वाले हैं। डिजिटल इंडिया के तहत 550 जो मंडियां हैं उनको ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ेंगे। यह मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। इसलिए दोस्तों कि आप अगर इससे पहले के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखें तो 2014 में भी और 2013 में तो बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए एग्रीकल्चर फील्ड से। मैं अब उस पर नहीं जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे क्योंकि वक्त इतना नहीं रहा गया है, लेकिन 2014 में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पेपर 3rd है। आपको मालूम है कि जो इकोनॉमिक्स का पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 3rd में पूछे जाते हैं। तो पेपर 3rd का 3रा ही क्वेश्चन है और उसमें दिया हुआ है कि एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियों ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है बल्कि वे खाद्य वस्तु की महंगाई का कारण भी रही है, समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देयर इज आल्सो ए पॉइंट ऑफ व्यू दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इसको हम APMC के नाम से जानते हैं, सेटअप अंडर द स्टेट एक्ट हैव नॉट ओनली इम्पेडेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बट आल्सो हैव बीन द कॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। सीधे सीधे APMC के अगेंस्ट ये स्थिति है, यानी कि यह माना जा रहा है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से इस बात पर बहुत जोर है, राज्यों से कहा जा रहा है कि आप अपने यहां इसको खत्म करें। इस पर मैंने स्पेशल ऑडियो में काफी चर्चा की है, यहां वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में अभी चर्चा कर सकूं, बाद में हो सकता है कि हम कभी इस पर बात करें, लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप APMC के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि जब आप इसको जानेंगे तभी आप ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार जो शुरू होने जा रहा है तब आप इसको जान सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने रेवेन्यू को खोना नहीं चाहती, तो इस बारे में वो सोच नहीं रही है खत्म करने के बारे में। तो ऐसी स्थिति में अब केंद्र एक राष्ट्रीय कृषि बाजार लेकर के आ रही है ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किसानों को फिर इसमें कैसे राहत मिलेगी, राष्ट्रीय कृषि बाजार से किस तरीके से राहत मिलेगी, या अभी वो किस संकट में है, उस ए जो अभी आपको मैंने जो एक्ट की बात की कि एपीएमसी जो बाजार समिति से संबंधित जो एक नियम कानून है राज्यों के, वो कृषि बाजार से किस तरीके से अलग होंगे, तो ये तुलनात्मक क्षमता आप में तभी आ पाएगी जब आप एपीएमसी के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी रखेंगे। तो मित्रों, ये कृषि बाजार जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, यह मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ रहा है, तो प्लीज अब इसके बारे में जब भी कुछ बातें होंगी तब आप उस पर ध्यान रखें। और 14 अप्रैल को तो ये लागू होने ही वाली है, तो उस समय इसके बारे में डिटेल्स और सारी ढेर सारी चीजें आएंगे, उस समय हम लोग बात करेंगे। मित्रों, अब छोटी छोटी दो खबरें थी कि मेक इन इंडिया जो मुंबई में मेक इन इंडिया वीक जो मुंबई में हुआ वो काफी सफल रहा है, और लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हैं। तो एक मेक इन इंडिया के सक्सेस के लिए आपके दिमाग में थोड़ी सा ये तथ्य होना चाहिए। फिर आपने न्यूज में यह भी सुना कि उत्तर पूर्व राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, और नो डाउट कि वो ये राज्य इसके लिए डिजर्व भी करते हैं क्योंकि वहां की क्लाइमेट ऐसी है। फिर आपने F-10 जो फाइटर प्लेन है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को देने की बात कही है, जिसका भारत ने विरोध किया है, थोड़ी सी बात हम लोगों ने इस पर की थी लेकिन मैंने समय को देखते हुए विस्तार से नहीं गया था। बाद में फिर एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वो आपको फिर सुनने को मिला होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, देखते हैं कि अब आगे इस बारे में क्या होता है, कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। आपको नेपाल संकट से आपको मालूम है, नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, उस संविधान का विरोध करने वाले कुछ एक वर्ग था जो मधेशिया, उसने उसका विरोध किया, फिर चेंज किया गया। भारत भी इसमें, भारत की भी इसमें चर्चा होती रही है, और भारत और नेपाल के संबंध थोड़े से खट्टे से होने लगे, चीन बीच में आने लगा, तो थोड़े से संबंधों में एक गड़बड़ी सी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत में आना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, बहुत से ईमेल हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस बात के लिए खासकर अपने फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच के स्टूडेंट की तारीफ करना चाहूंगा कि वो जो मेल लिख रहे हैं उसमें अभी जो उनको स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया गया था, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस, जिसमें मैंने कहा था कि अब आप अपना रिव्यू कीजिए। फर्स्ट बैच है, सवा साल लगभग हो गए उसको क्लास अटेंड किए हुए। जो सेकेंड बैच है उसको लगभग लगभग एक साल हो गए हैं, और जो थर्ड बैच है उसको 3-4 महीने हो गए हैं। तो अपने का रिव्यू, अपने आप को आप रिव्यू तो करें कि क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्या फायदा हुआ है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत ही पॉजिटिव चीजें पढ़ने को मिल रही हैं उसके जवाब में, और कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें अभी परिवर्तन नहीं आया है, कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसके लिए मैं अपने तीनों बैच के स्टूडेंट्स की बहुत मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। दोस्तों, अब मैं मेल पर आता हूं। जो मेल जो लिखे हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार। उसे प्रशांत कुमार का मेल है पटना से, जिन्होंने बताया कि वो लिखा है कि एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट जो सामने बैठे हुए थे सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। फिर प्रशांत ने, उन्होंने FEIS.com के बारे में बताया, वो गए और जब उन्होंने सुना तो बाद में उन्होंने फोन करके प्रशांत को धन्यवाद दिया कि आपने इसके बारे में बताया, हमको अफसोस है कि ये पहले पता नहीं लग पाया। और उन्होंने लिखा कि लगभग 50 स्टूडेंट्स को वे साइट के बारे में बता चुके हैं। तो प्रशांत, आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत आभार, और सच पूछिए तो साधुवाद इस बात के लिए कि आपको जिससे फायदा हो रहा है उस फायदे को आप दूसरों तक पहुंचाने का भी उद्यम कर रहे हैं। आपकी एक उदार भावना है, ये उदार विचार हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहे एकेडमी से सीधे जुड़े हैं या ऑनलाइन FEIS.com के माध्यम, आप ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से जुड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब हमारे एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं, ये बहुत बड़ा परिवार है। वो सब इसी तरह के उदार विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक दूसरे की मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मित्रों, बहुत से मेल के बीच में मैंने कुछ नाम चुने हैं, वो हैं पंकज मिश्रा दिल्ली से, रजत हैं बोलपुर से, अखंड प्रताप सिंह आगरा से, ओपी जाट अजमेर से, निशांत राज पटना से, धर्मेंद्र अग्रवाल मथुरा से, दिव्या प्रभा पाली राजस्थान से, रजिया बेगम और नवीन कुमार बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मित्रों, दो मेल मैंने बेस्ट मेल के रूप में छांटे हैं, उसमें एक है रजिया बेगम और दूसरे हैं रजत बोलपुर। तो रजत और रजिया, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और बहुत ही खूबसूरत और सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। आपके सैटरडे संडे बहुत अच्छे से बीते, बहुत ही खुशनुमा हो, और आप फिर से इन दो दिनों में नई एनर्जी हासिल करें, नए उत्साह के साथ मंडे को फिर से अपने नए वीक की तैयारी में जुड़ जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।